वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, इन्हें नेक तुम बनाना, मदनी मदीने वाले।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله پیارے آقا مکی مدنی مصطفی सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फजाइल हैं। स्पेशली जुम्मा के दुरूद पाक की अपनी बरकतें बयान की गई हैं। मैं इनमें से आपको एक फजीलत सुनाता हूं जिसका ताल्लुक खास जुम्मा और शबे जुम्मा से है। हदीस पाक में है कि शबे जुम्मा रोजे जुम्मा मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हम ने कल इमाम गजाली अल रहमतुल्लाहिल वाली ने जो औलाद की तरबियत के ताल्लुक से जो हमें मदनी फूल अता फरमाए नसीहतें की हैं, मैंने उनमें से चंद चीजें कल मैंने आपके सामने बयान की थी। हमारा टॉपिक है हमारी नस्लें, और हमारी नस्लें ये हमारे घर में ही परवान चढ़ती हैं। सबसे बुनियादी जो इनकी जो दर्जगाह है वो घर ही है, और वालिदैन की जिम्मेदारी बहुत ही ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है ही वालिदैन की, कि वालिद का जो अपनी औलाद को सबसे बेहतर अतिया तोहफा है वो अच्छी तालीम और तरबियत है। हमारे तालीम और तरबियत का जो मामला है वो उसकी सोच बदल चुकी है, जिसकी वजह से ना सही मायना में तालीम रही और तरबियत का तो मामला ही बड़ा अजीब व गरीब हो चुका है। लिहाजा ये हमारे लिए वक्त और ये अयाम ये घड़ियां बड़ी मुबारक हैं कि हमें ये पता चल रहा है कि एज ए पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी क्या है, और बच्चों को बाद वक्त पेरेंट्स नहीं बता पा रहे होते तो हम चैनल के जरिए गोया कि यूं समझिए कि मैं बाद वक्त वालिदैन की नुमाइंदगी करते हुए बच्चों को बता या सिखा रहा होता हूं, और जाहिर है कि फिर वो आगे एक बार का बताना तो बताना ही है लेकिन फिर उसको उसकी मश्क कराना, उसको चलाना, उसकी प्रैक्टिस कराना और उसको उसमें ढालना, डेफिनेटली ये जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो कल कुछ बातें मैंने बयान की थी जो समझिए कि मैं उसी को आज कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, बास बातें ऐसी होती हैं कि वो डाली जाती हैं और बाज से बचाया जाता है, यानी कि आदतों की दो किस्में हो गई ना, बाज आदतें बनाई जाएंगी कि आदत उसकी बने, वो उस आदत में ढले, और बाज वो होती हैं जिनसे ये आपको ये जहन बना हुआ इन आदतों से अपने बच्चे को बचाना है। तो आगे बढ़ते हैं फिर इंशाल्लाह हस्बे मौका आपकी कॉल्स भी मैं सिलसिले में शामिल करने की नीयत है, और इंशाल्लाह डॉक्टर जीरक अगर हमारे साथ होंगे तो इंशाल्लाह डॉक्टर जीरक माशाल्लाह हमारे साथ शुरू से ही हैं, तो डॉक्टर जीरक चूंकि ये माहिर नफ्सियात भी हैं तो इंशाल्लाह इनकी भी माहिराना राय जो एक एक्सपर्ट ओपिनियन होता है वो भी इंशाल्लाह हम अपने फोरम में शामिल करते हैं। तो आज जो मौजू मैं लेकर चल रहा हूं, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि इससे हर मिलने जुलने वाले की इज्जत, अल्लाह करे कि आप इसको नोट कर लें कि इमाम गजाली लिखते हैं कि अपने बच्चे को हर मिलने जुलने वाले जिनसे इसका इंट्रैक्शन है मिलता है, मिलने वाले की इज्जत करने नंबर एक, आजिजी से पेश आने, اور ہر کسی کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنے کا عادی بنائے. میری ملاقات بھی پچھلے دنوں ایک جگہ پر, تو والد صاحب سے میں پہلی بار ان سے ملا, وہ پرانی بات نہیں ہے, لیٹسٹ ڈسکشنز کر رہا ہوں میں. میں پہلی دفعہ ان سے ملا, انہیں ان کے گھر پہ جانا بھی ہوا, انہوں نے اپنے بیٹے کو ملایا. تو والد خود ہی اپنے بچے کو بتا رہے تھے کہ اس طرح کرنا ہے, اچھی چیز تھی. لیکن ہمیں سب کے سامنے اپنے بچے کو سمجھانا پڑے, اس میں تھوڑا سا بچہ جو ہے نا وہ فیل کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے گھر پر کوئی شخصیت آتی ہے کہ کوئی بزرگ آپ کے گھر پر آئے اور آپ اپنے بچے کو یوں یوں کریں گے کہ بیٹا یوں کرو, بیٹا یوں کرو, بیٹا یوں کرو, تو وہ بچہ جو ہے نا وہ اس شخصیت کے آگے شرمندہ ہوگا. وہ خیر کہنے پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہے کیسے رہیں, یا اگر آپ خود ہی وہ عمل کریں گے نا بچے کے سامنے تو بچہ بھی پھر وہ عمل کرے گا. یعنی ایک یہاں میں چل رہا ہوں اوپر سے, مثال کے طور پر آپ کے دادا آپ کے گھر پر آئے, ٹھیک ہے, آپ کے دادا آپ کے گھر پر آئے, اب والد صاحب بھی ہیں, دادا کا بیٹا بھی ہے اور والد صاحب بھی اور پوتا بھی ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے دادا گھر پر آئے تو والد صاحب نے بڑھ کر, جو کہ آگے بڑھ کر اپنے ابو کا ہاتھ چوما, کیونکہ وہ دادا تو پوتے کے ہیں, اس کے تو ابو ہیں, اس سے آگے بڑھ کر اپنے والد کے ہاتھ چومے. تو جیسے والد کو ہاتھ چومتا ان کا بیٹا دیکھے گا نا, تو وہ آگے بڑھ کر اپنے دادا کے بھی ہاتھ چومے گا. آپ کو تجربہ ہوگا کبھی آپ کسی کے گھر پر جائیں, تو یہ بھی ایک سمجھیں کہ طریقہ کار میں اس کو شامل کر سکتے ہیں آپ, کہ جب آپ جاتے ہیں نا تو میزبان آپ کو دروازے سے لیتا ہے, تو میزبان بعض وقت گھر کے باہر ہی چپل اتار دیتا ہے جس کا گھر ہے, تو یہ انڈیکیشن ہے کہ ہم چپل یہاں اتارتے ہیں. تب جب یہ چپل یہاں اتارے گا تو مہمان کبھی بھی چپل پہن کے اندر نہیں جائے گا, مہمان بھی وہیں چپل اتار دے گا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ افریقہ اور دنیا کے ایسے کئی ممالک ہیں جہاں جانا ہوتا ہے, وہاں لوگ جوتے چپل نہیں اتارتے گھروں کے اندر, تو آپ جائیں تو وہ نارمل جوتوں کے ساتھ آپ گھر میں چلے جائیں, تو وہاں مایوبی نہیں ہے, کوئی فیل بھی نہیں کیا جاتا کہ ہاں یہ بھی کوئی مطلب آؤٹ آف مینرس یا آؤٹ آف ایٹیکیٹ بات چیت ہوئی. تو یہ ایک ہوتا ہے, تو آپ جیسا کریں گے نا, والد کو جیسا کرتا اولاد دیکھتی ہے تو اولاد اس طرح کرنا شروع کر دیتی ہے. اس لیے میں نے کل بھی کہا تھا کہ وقت ملتا رہے تو اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھیں اور اس کو آپ اپنی ان اچھی عادتوں میں شامل کریں, کہ لوگوں سے ملنے جلنے کا طریقہ تو تبھی آپ اولاد کو سکھائیں گے نا جب آپ اپنے ساتھ لوگوں سے ملیں گے اور پھر گھر ہی سے تربیت دے کر نکلیں کہ دیکھو بیٹا اسے کرنا ہے. تو ملنے جلنے والوں کی عزت کرنے, ورنہ بعض وقت بچے نہیں کرتے اور بڑا مطلب کہ ان کا روڈ انداز ہوتا ہے, اور بعضوں کے باپ رے باپ, بچوں کو اللہ مطلب کہ سلامت رکھے, یقین مانیے, مطلب یہ میرے اپنے ذاتی تجربہ درج کر رہا ہوں, اتنے والدین مینر سکھاتے ہیں, اتنے والدین طریقے سکھاتے ہیں کہ بعضوں کا رشک آتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, کتنا مطلب کہ یار بڑے بڑے, یعنی یوں نہیں کہ والد صاحب کی عمر اگر 60-65 سال کی ہے تو بچوں کی عمریں بھی مطلب 35-40 سال کی ہوتی ہیں. وہ جو بزرگوں کے آگے جو ادب, جیسے میرا کئی امیل سنت کے ساتھ جانا ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ والد صاحب کے ساتھ ساتھ بچے جس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں, وہ ایک اپنی مثال آپ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں والدین کی تربیت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. بعض وقت بالکل کچھ نہیں, مطلب زبردستی والد صاحب بلاتے ہیں, آ جاؤ کر لو, پھر اس کو سب کے سامنے بولیں گے یوں کرو. اچھا پھر بعض وقت کیا ہوتا ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ چلو بیٹھ جاؤ, پھر وہ اسی شخصیت کے سامنے اپنے بچے کی برائی بیان کر رہا ہوتا ہے, حضور یہ یوں کرتا ہے, اتنا یہ میں کہتا ہوں آپ کا غلط انداز ہے, آپ کیوں مطلب کہ آپ کے باغ کا یہ پھل ہے, آپ کے باغیچے کا یہ پھل ہے, آپ کے درخت کا یہ پھل ہے, اگر کروٹ دے رہا ہے تو آپ کیوں مطلب کہ لوگوں کے سامنے اپنے باغ کو رسوا کر رہے ہیں. کبھی بھی اپنی اولاد کو, یہ میری تمام والدین کے ساتھ درخواست ہے, کبھی بھی اپنی اولاد کو کسی تھرڈ پرسن کے آگے ذلیل نہ کرے. وہ جو بات کرنی ہے سمجھانے الگ سے کریں, آپ اگنور کر جائیں. تو یہ جو بچے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جب لوگوں سے ملاقاتیں کریں तो इज्जत करना सीखें शरीयत के दायरे में रहकर, इज्जत करें और अदब करें, एहतराम करें, तो इंशाल्लाह इससे आपके अब्बू की और आपकी अम्मी की इज्जत बढ़ेगी कि यार ये बच्चा सलीके वाला, ये बच्चा तरबियत वाला है। फिर फरमाते इमाम गजाली, आजिजी से पेश आए, तकबुर ना करे, गुरूर ना करे, और मतलब बाज औकात होता है ऐसा अंदाज, तो ऐसी कोई हरकत ना करे, आजिजी करे और अपने आप को छोटा बनाकर ही हमेशा पेश करना चाहिए जब लोगों से मिले जुले। फिर फरमाते और हर किसी के साथ नरमी से गुफ्तगु करने का आदि बनाए। अब ये जब आप घर में करेंगे तो होगा, और जब बच्चा खुद वालिदैन के साथ, अब मैं बच्चे जैसे सुन रहे होते हैं, आप अपने वालिदैन के साथ अदब करेंगे, अपने वालिदैन के साथ आजिजी से पेश आएंगे, अपने वालिदैन के साथ नरमी से बात करेंगे, अपने वालिदैन के साथ आप अच्छी अंदाज से गुफ्तगू करेंगे, तो आपका ये आदत और ये अंदाज बाहर वालों पर भी जाहिर होगा। तो ये अपने बच्चे को सिखाना होता है। कभी कभी बच्चा आपको लगेगा कि ये बदतमीजी कर रहा है, बद अखलाकी कर रहा है, झाड़ रहा है, डांट रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो ये लोगों से मिलने जुलने में जब ये हरकतें करेगा तो इससे आपको चार आदमी के बीच में शर्मिंदगी होगी। तो आप घर ही में इसकी तरबियत करें, घर ही में इसको बताएं कि बेटा ऐसे मिलना होता है, ऐसे आना होता है, ऐसे जाना होता है। ये थोड़ी एज वाले बच्चे होते हैं, ये बहुत छोटे, तो फिर उसको तो फिर लोग कहते हैं कि यार ये बच्चा तो बच्चा, तो फिर बच्चों वाली हरकतें करेगा। लेकिन जैसे जैसे थोड़े बड़े होते हैं ना, बास होते हैं, चार पांच साल के भी हो जाते हैं, तो इनको बड़ी तमीज होती है और लोग इज्जत करते हैं उनकी, यार ये बच्चा तमीज वाला है। तो ये चीजें वालिदैन का काम है कि अपने बच्चों को सिखाए हर मिलने जुलने वाले की इज्जत करने के ताल्लुक से, उनके साथ आजीजी से पेश आने के ताल्लुक से, नरमी से गुफ्तगू करने के ताल्लुक से। ये अपनी औलाद की तरबियत करनी है। और हर वो बच्चा जो मुझे सुन रहा है या बच्ची जो मुझे सुन रहे हैं, आपने आदत इख्तियार करनी है बच्चों के, बड़ों की इज्जत करना सीखें, उनके साथ आजिजी से पेश आए, बड़ा मतलब बहुत खूबसूरत तरीके से सलाम करें जब भी जाएं। बेटा सबसे पहले कहें अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, बिल्कुल अच्छी तरीके सलाम करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है सामने वाले को। आपका खाली सलाम करना है ना बेटा, यूं समझिए कि सामने वाले के दिल में ये बात डाल देता है कि यार ये बड़ा बच्चा तमीज वाला, सलीके वाला है, और ये मतलब माशाल्लाह इसके वालिद साहब की बड़ी तरबियत है। आपके वालिद साहब को कितनी खुशी होती होगी, जरा सोचा है आपने, कि जब आप ये अंदाज इख्तियार करेंगे आस पास पड़ोस के अंदर आते जाते हुए, महल्ले में आते जाते हुए सलाम करेंगे, आजिजी करेंगे, नरमी से बात करेंगे, ना चीखेंगे चिल्लाएंगे, तो आप बताइए कि इससे खुद आपके अम्मी अबू की इज्जत में कितना इजाफा होगा, लोग कितनी तारीफ करेंगे कि माशाल्लाह आपने कितनी प्यारी तरबियत की है। आपकी भी तो इज्जत होगी ना, वो आपको बुलाएंगे, बिठाएंगे, आपको अपने साथ रखेंगे, वरना वो आपको दूर भगा देंगे। तो ये हो गया पहला सेक्शन कि अब आजिजी, इज्जत और नरमी, ये तीन चीजें आपको मैंने बताई। चलते डॉक्टर जीरक से। डॉक्टर जीरक, अब तक जो डिस्कशन हुई आप क्या फरमाते हैं?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, कल से जब मैंने आपने इमाम गजाली की इश्याउल उलूम का तज़किरा किया तो आज मुझे भी जो है वो सआदत मिली बिलखसूस इस चैप्टर का मुताला करने की। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे मतलब फूल थे, इंशाल्लाह आपके जरिए मजीद सीखेंगे भी। तो ये देखें, इज्जत नफ्स के हवाले से जो आपने मदनी कून दिए, कल भी इसका थोड़ा सा तज़किरा हुआ था कि हर इंसान चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, उसको उसको अपने अंदर खुद एतमादी के लिए इज्जत नफ्स का जो है वो इदराक होता है। और अगर उसकी इज्जत नफ्स मजरूह की जाए, जिस तरह मिसालों से आपने बयान फरमाया, तो उसके अंदर खुद एतमादी खत्म हो जाती है। और बच्चों के लिए क्या होता है कि कोई भी काम चंद मरतबा अगर उनके साथ ऐसा कर दिया जाए ना, तो अब समझें कि उनका ब्रेन जो है वो उसी सिचुएशन में कंडीशन हो जाता है और वो इसको अपने यानी कि एक बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं कि जो है वो मेरे साथ ऐसे होता, फिर अब जहन में इनके इसी तरह के ख्यालात आते रहेंगे, यार मैं वहां गया हो सकता है कोई मेरी इज्जत नफ्स मजरूह कर दे, मैंने अगर यहाँ कुछ बोला तो हो सकता है कि जो है मेरा कोई उस पर क्रिटिसिज्म कर दे। और अब ये क्योंकि इनके अंदर एतमाद नहीं रहता, तो ना ये कुछ सही मानों में बोल सकते हैं ना ये फिर सही मानू में कुछ काम कर सकते हैं, पाँव पर फिर ये सीधी सी बात है कभी खड़े नहीं रह सकते, बिसाखियों का सहारा ही रहता है दूसरों की सूरत में।
माशाल्लाह, कॉल लेते हैं।
मैं नूर इस्लाम अतारी मर्दान काठलंग से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे निगरानी शुरा की बारगाह में मेरा अर्ज है कि बाज़ बच्चों को अगर काम दिया जाता है कि ये काम कर लो उसके बाद आप खेलो, वो काम वो बहुत जल्दी कर लेते हैं, और जब उसको कहते हैं कि बस ये काम करो खेलने के लिए नहीं जाने, तो फिर उस काम को वो बड़े डिले करते हैं। मिसाल उसको बताते हैं कि सबक याद करो, तो उस सबक को फिर बड़ी मुश्किल से याद करते हैं। अगर कहते हैं कि जाओ खेलो इतने टाइम में ये सबक याद करो, तो फिर वो सबक याद जल्दी कर लेते हैं। तो इसके बारे में आप मदी फूल अता फरमाए कि हम किस तरीके से उनको खेलने के लिए छोड़े या न छोड़े।
देखिए, तालीमी मामले के साथ साथ इसको कुछ ना कुछ इसको खेल जो के शरण जायज और सेहत और बदन के लिए और जहन के लिए अच्छा हो, इस तरह की चीजें एक्टिविटीज की उसको आदत होती है तो कोई हर्ज नहीं है। जबकि इसका माहौल खराब ना होता हो, घर के अंदर ही ऐसा निजाम बन जाए तो सबसे बेहतर होता है कि इस तरह की चीज हो तो उसको ये पता होगा कभी मैं ये खेलूंगा अवैध करूंगा तो मुझे ये वक्त भी मिलेगा। वरना खुद इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी ये बातें लिखी हैं कि बच्चे को कोई अच्छा खेल खेलने की इजाजत दे ताकि इससे मदरसे की थकावट दूर हो, क्योंकि बच्चा खेलने से नहीं थकता, ये इमाम गजाली अलैह रहमान ने लिखा है यहुल उलूम में। लेकिन याद रखिएगा यहाँ खेल बड़े अजीब व गरीब, ये खेलों में भी बड़ा खेल है, तो ऐसा कोई खेल या कोई ऐसी आदत बच्चे में ना चली जाए कि जिससे वो फिर उसकी तरबियत या उसकी अखलाकियात बर्बाद हो, और ये ज्यादा इम्कान है। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि बच्चे के लिए कोई ऐसा इंतजाम रखे, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए घर के अंदर ही कोई ऐसे ब्लॉक्स लग दिए जाते हैं, कोई ऐसी चीजें बना दी जाती हैं, कोई ऐसा ही मतलब के सोच और अक्ल और जहन को बढ़ाने वाली चीजें दी जाती है कि जिसम भी तवाना रहे और ये सारी चीजें रहे। तो क्योंकि माहौल बहुत अजीब सेंसिटिव है, या फिर खेल खेल इसके आते मोबाइल दे दिया जाएगा तो गया, फिर बेचारा बहुत मुश्किल में आ जाएगा। तो खुद वाली साहब उसके साथ कोई ऐसी मसरूफियत बना लें, कुछ भाई बहन मसरूफियत बना लें, घर के अंदर अम्मी को इसके साथ मसरूफियत बना लें, यानी कोई ऐसी चीज रखें, क्योंकि बाहर उमूमन बच्चों के जो अखलाक और मामलात है ना वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते, हर एक काम में नहीं कहता, ये स्कूल की भी और मदरसों की भी यही हालत होता है। हम तो चलो बहुत कोशिश करके तरबियत करके बड़ी तमीज सिखा कर हम बच्चे को मदरसा स्कूल भेज देते हैं, लेकिन वहां जब जाता है तो वहां पर जो दूसरे बच्चे आते हैं वो जिन घरों से आए उनकी ऐसी तरबियत नहीं होती, तो बच्चा हमारा रहता 8-10 साल उन्हीं के साथ है। मैं वाकई सही कह रहा हूँ कि ये जो बाज जगहों पर 6-7 साल के बाद स्कूलों में लेने की जो रूटीन है ना, ये यूं किसी हद तक समझ में तो आती है, मैं सही बता रहा हूँ, या 6-7 साल तक बच्चा रही माँ बाप के, वो उसकी तबीयतें मंज जाती हैं, फिर उसके बाद वो इतनी जल्दी असर कबूल नहीं करता, वो उसके अखलाक और किरदार या 6-7 साल का एक मतलब माशाल्लाह एक बच्चा होता है, तो ये होता है। अब हम आते 2.5-3-4 साल के बच्चों को 5 साल के बच्चों को भेज देते हैं, बच्चियां भेज देते हैं, अब आप लाख तमीज सिखा कर भेजें, लाख उसको आप फिल्में ड्रामे गाने बाजों से बचा कर भेजें, मैं तो जर्नल बात कर रहा हूँ, और वहां जहाँ जिसके साथ इसका उठना बैठना आना जाना हो वहां पर वो गाने फिल्में सब उसके शौकीन जमा होंगे, हर घर में तो माहौल नहीं होता। ये एक ऐसा प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर कोई मुझसे इसका हल पूछे तो सच्ची बात है कि हल है लेकिन बताने की हिम्मत और जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अब जो है वो है। तो ये एक प्रॉब्लम तो है कि घर में हम वाकई अपने अपने बच्चों को अपनी औलाद को बहुत ज्यादा उसको मतलब संभालने में कामयाब हो भी जाते हैं, लेकिन जो तालीमी इदारे हैं इवन के दीनी तालीमी इदारों में भी हैं तो मसाइल, क्योंकि बच्चा घर से ही आता है, वहां तालीमी इदारे में अगरचे कितना ही अच्छा माहौल हो लेकिन बच्चा टीचर या बाजी या उस्ताद या कारी साहब के साथ तो पूरा दिन नहीं अटैच होता, उसकी तो दोस्ती सोबत बच्चों के साथ ही होती है ना। अब वो बच्चा जिस नेचर का खुदा ना खास्ता आया, गाली देने वाला आया, वो लड़ने झगड़ने, तो उसका वो असर कबूल करता है, तो ये सारी चीजें तो प्रॉब्लम है। तो बच्चे के साथ थोड़ा बहुत घर में ऐसा तफरी और इंटरटेन माहौल रहना चाहिए ताकि वो आपके साथ گلے ملے بھی اور اس کو پتا ہے کہ میں یہ جلدی کر لوں گا تو میرا ایک کام ہو جائے گا اور میں اس طرف مائل ہو جاؤں گا. بچہ کھیل کی طرف مائل تو ہوگا, بچہ تو پھر بچہ ہے نا, بڑے اور بچوں میں کچھ تو فرق ہوگا نا. جی کال دیں.
میرا نام فضل الہی ہے, میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم دینی چاہیے یا دنیائی تعلیم دینی چاہیے؟
بچوں کو تعلیم دینی چاہیے, اس کو علم سکھانا چاہیے, اس کو تربیت دینی چاہیے. بدقسمتی کے ساتھ ہم نے یہ جدا کر دیا ہے کہ دین الگ, دین کی تعلیم یا دنیا کی تعلیم. ایک تعلیم دیں, اس کے اندر اس کا دین, اس کے فرائض, اس کے واجبات, اس کے اخلاقیات جو میں بتا رہا ہوں, بتا بھی رہا ہوں, اس کے عقائد, اس کے افعال, اس کے اعمال, یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. جیسے امام غزالی علیہ الرحمن نے آگے لکھا ہے کہ بچہ جب سینے تمیز کو پہنچے یعنی سمجھ اور باشعور ہو جائے تو وضو نماز میں اس کی غفلت سے چشم پوشی نہ کرے, اب نظر نہ پھیرے, اور اس سے رمضان کے کچھ نہ کچھ روزے رکھوائے. نیز ریشم وغیرہ جو سونا وغیرہ جو ہوتا ہے جو مرد کو جائز نہیں ہے اس کے پہننے سے اسے روکے, اور جو بھی چیز شریعت کی طرف سے اس کے لیے ضروری ہو اس کی تعلیم دے. یہ ساری چیزیں. اس کے بعد فرماتے ہیں چوری, حرام کھانے, خیانت, جھوٹ, فحش کلامی اور ہر وہ بری عادت جو بچوں پر غالب ہو جاتی ہے ان سے سب سے روکے, ان سب سے اس کو روکے. یہ آگے آپ کے سوال کا ایک پروپر جواب. پھر اس کی وہ دنیاوی تعلیم جو اس کے لیے ضروری ہے, معاش کے لیے ضروری ہے, اس کے روزگار کے لیے ضروری ہے, ایک نظام زندگی جس کے ساتھ متعلق ہے وہ ضروری ہے, اس تعلیم کو بھی جائز اور حلال طریقے کے ساتھ وہ اس کو دینے کا اہتمام و انتظام کرے. لیکن سب سے پہلے اس کی وہ دینی فرائض واجب اس کی عید کے ساتھ یہ تعلیم بہت ضروری ہے, ورنہ بعض صورتوں میں اگر یہ فرائض اور واجبات جو اس کے اوپر علم سیکھنے ضروری ہیں بچے کو, اگر یہ چھوڑ کر کسی اور علم کی طرف جائیں گے تو کئی صورتوں میں حرام و ناجائز کام کیا وہ مرتکب ٹھہرے گا, وہ اس کا مطلب اس کے اوپر حکم لگے گا. تو ہم اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں. میں مثال دیتا ہوں, جیسے دار المدینہ ہے ہمارا, ٹھیک ہے. اب دار المدینہ میں ہم نے کوشش یہی کرتے ہیں, دیکھیں کوشش کر سکتا ہے انسان, اور کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اس میں مکمل کامیاب ہو گئے, لیکن ایک سوچ ہے, ایک سمجھ ہے, اعلیٰ حضرت کی ایک سوچ ہے, دعوت اسلامی کا میسج ہے, اور ایک ماحول کی برکت ہے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دار المدینہ میں ہم اس انداز سے بچے کو لے کر چلے کہ اس کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم, اب جس کو ہم, میں تو ایک تعلیم کہوں گا کہ یہ ایک تعلیمی نظام کو ہم ایک چھت کے نیچے جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو دار المدینہ کہتے ہیں, کہ ایک ہی انداز, اس کو اس وقت یہ بتانا, یہ بتانا, یہ بتانا ہے, یہ لینگویج ہے, یہ میتھمیٹکس ہے, یہ اسلام ہے, یہ دین ہے, یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ اخلاقیات ہیں, یہ سیوک سینس کی باتیں ہیں, یہ سوشل مینرز کی باتیں ہیں, یہ تربیت ہے. اس طرح کی چیزیں بچوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے, اسی طرح اس کو اور مزید آگے لے کر چلتے ہیں, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, تاکہ اس کی ایج کے ساتھ ساتھ اس کو دین کی جو بنیادی تعلیم ہے جو اس کو اس عمر میں آنا ضروری ہے, اس کو فوکس کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. جس میں ہم کوشش کر سکتے ہیں, آپ دعا کریں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. طریقے کار کہتے تھے, انشاءاللہ جب ہم چلیں گے تو اللہ نے چاہا تو ہماری بچوں کی تعلیم و تربیت, میں نے کل بھی کہا تھا ہمارے یہاں تعلیم پر زور تربیت نہیں ہو, تعلیم میں بھی کمزوریاں اتنی ہیں کہ میں ابھی کیا اس کو کھل کر اس پر اتنی ڈسکس یا ڈیبیٹ کروں, بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی بیچارے کو عموماً کچھ نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ چیزیں بہت بڑی, مطلب کہ اس وقت یوں سمجھے کہ بہت بڑا ریولیشن چاہیے, بہت بڑا مدنی انقلاب چاہیے, اپنے گھر کے اندر بھی چاہیے اور تعلیم اداروں میں بھی چاہیے. یہ میری اپنی ناقص عقل اور سوچ کے مطابق عرض کر رہا ہوں. پیرنٹس کو بھی بہت زیادہ اس معاملے میں تربیت کی حاجت ہے, اور جو ٹیچرز طبقہ ہے جو اسکول, کالج, یونیورسٹیز کے اندر جو پڑھاتے ہیں, ان کو بھی واقعی اس عنوان پر, خاص طور پہ اس عنوان پر, ایز اے کیریکولم بات نہیں کر رہا میں آپ سے, ایک ایز اے کیریکولم پروفیشنل بات نہیں کر رہا میں آپ سے, لیکن جو ایک اس مسلمان بچے کی جو تعلیم و تربیت شروع سے لے کر آگے تک ہونی چاہیے, جو دین کا تقاضا ہے, اسلام کا تقاضا ہے, قرآن و حدیث کا تقاضا ہے, اخلاقیات کا تقاضا ہے, سنت نبوی کا تقاضا ہے, जिससे वो उसकी तरबियत होती है और एक बेहतरीन मजबूत कामिल मोमिन मुसलमान बनकर इस माशरे के अंदर अपनी खिदमात को और अपनी इम्पोर्टेंस को वो मतलब के बुरे कार लाता है, उसकी बहुत जरूरत है। शायद मैंने बहुत कुछ अर्ज कर दिया है आपको। कॉल्स लेते हैं।
सलामत अली बोल रहा हूँ, बाबुल मदीना कराची से। निगरान शुरा की बारगाह में मेरा सवाल है कि मेरा बच्चा 6-7 साल से हिफ्ज कर रहा है, लेकिन अब 23वें सिपारे में आके अटक गया है, 2 साल से आगे नहीं निकल रहा, इसके लिए कोई हल बता दीजिएगा।
आप दुआ भी करें, इसकी हौसला अफजाई करें, पीठ थपके, घर में टाइम दे के बेटा घर में पढ़ो, और माशाल्लाह इतना पीछे सा यानी यूँ समझिए कि ये बहुत बड़ा हिस्सा तो कर चुका ना, 23 पारे तक आप कह रहे हो चुका, अब 7 पारे रह गए, 8 पारे रह गए, उसका मतलब। अच्छा ये बता दो कि इसने मुश्किल हिस्सा गुजार लिया है, मुश्किल हिस्सा गुजार लिया है, जो कुरान करीम को जो पढ़ते हैं, जिन्होंने कुरान करीम के उसलूब को देखा समझा है, वो मेरी बात से इंशाल्लाह तस्दीक करेंगे। माशाल्लाह ये मुश्किल पीरियड गुजार चुके हैं, लेकिन बाद औकात एज के साथ साथ कुछ तरजीहात और तवज्जो बढ़ जाती है बच्चों की, या कुछ माहौल में तब्दीली आ जाती है, तो शफकत दें, मोहब्बत दें, घर में लेकर पढ़ाएं और कारी साहब से राबता करें, और कारी साहब और आप दोनों की ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जिससे बच्चे को फायदा हो। इंशाल्लाह आप दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो मेरे रब ने चाहा तो ये अपनी मंजिल को पा लेगा। अब बहुत कम वक्त रह गया है, शैतान बहुत कोशिश करेगा शायद कि ये किसी सूरत हाफिज ना बने, आपने अपने बच्चे को हाफिज बनाना है, और इस तरह के जो भी बच्चे हैं बेटा बहुत कोशिश कर ली आपने, थोड़ा सा है बस, अब थोड़ी सी मंजिल रह गई है, बल्कि अगर मंजिल करीब आ जाए तो बंदा सवारी तेज कर देता है। बस हिम्मत कीजिएगा, और वालिदैन को चाहिए कि यहाँ पर डांट डपट के बजाय अब इसकी बस हिम्मत बढ़ाएं, इसको इनक्रेज करें, इसकी हौसला अफजाई करें, और अंडरस्टैंडिंग कर लें कारी साहब वगैरह के साथ, फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि पहले से ज्यादा अच्छी स्पीड हो जाएगी। कॉल दें।
मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा इस्लामाबाद में पढ़ता है और हम बलूचिस्तान में रहते हैं, तो छुट्टियां होती है तो वो आते हैं, तो इस दौरान अब सारा दिन वो मोबाइल के साथ ही, अब सख्ती करें तो किस हवाले से, और कोई समझाना चाहते हैं वो मदनी फूल लेता।
अब मसला देखें दो तीन है, ये आप खुद कह रहे हैं कि ये इस्लामाबाद से आपके बेटे या बाहर से तशरीफ लाते हैं, तो अब जाहिर है कि वहाँ ये जितने महीनों रहे वहां इनकी जो आदत बनी हुई है, ये आदत घर आते क्या बदल जाएगी? कि ऐसा तो है नहीं कि आदत एक कपड़ों की तरह है कि यार ये आदत के कपड़े अपने यहाँ रख देते हैं और घर जाकर उन आदतों के कपड़े पहनेंगे। आदत तो इंसान के साथ चल रही होती है, वक्ती तौर पर थोड़ा सा आएगा बैठेगा तो बातचीत करेगा, फिर दोबारा उस रूटीन में चला जाएगा। तो आदत ही अव्वल तो बदलने की जरूरत पड़ेगी कि ये इसकी तबीयत में ही ये फर्क आ जाए कि ये अब इसका जो मोबाइल मतलब कि जो फोबिया हो चुका है इसको, और टेलीफोनिया हो जाता है लोगों को, तो ये इससे उसको निजात मिले। और अगर घर आ जाए तो उसको फिर आप ऐसा माहौल दें कि जिसमें वो बिजी रहे, जैसे आपको पता है कि बेटा आने वाला है तो बेटे के लिए ऐसी मसरूफियत रखे, वो फारिग होगा तो पढ़ाई तो वहां थी, या तो पढ़ाई भी शायद घर पर नहीं होती होगी, और आप भी चले गए, मिसाल देता हूँ वो भी चले गए, सब चले, घर में बच्चा अकेला है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई ऐसी मसरूफियत नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, तो उसको अच्छी एक्टिविटीज में दे, पता कि बच्चा आएगा 15 दिन 20 दिन या महीना एक हफ्ता रहेगा, तो वो इन इन कामों में बिजी रहे, तो इनको अपने अच्छे और उम्दा कामों में बिजी रखने की कोशिश करें। तो अल्टरनेट तो देना पड़ेगा ना, खाली खाली इसको बैठा के रखो और उसके सामने मोबाइल पड़ा हुआ और आपने उसको इम्तिहान में डाला हुआ है कि आपके सामने मोबाइल पड़ा हुआ है, आप हाथ बंद कर बैठो और आपने मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है, 5 घंटे का आपके पास टाइम है, एक बार भी हाथ लगाया आप मुकाबला हार गए, तो नहीं ना होगा, तो इसको किस तरह से लेकर चलना है, मैंने इसकी चंद मिसालें आपको पेश की है। डॉक्टर जीरा क्या कहते हैं आप?
जी इसमें अगर मोबाइल फोन के हवाले से जो उनका इस्तेमाल है, यकीनन जो जब वो बच्चा इस्लामाबाद में होता है तो उसकी एक आदत पुख्ता बन चुकी है, अब वो घर में थोड़े अरसे के लिए आएगा तो बिल्कुल आदत तब्दील थोड़ी हो जाएगी, तो इसमें वालिदैन के लिए ये भी जरूरी है कि जिस इदारे के सिपुर्द आपने किया है, अगर ये तालीमी इदारे के साथ मुंसलिक हैं तो उस इदारे पर भी नजर रखी जाए, उसातिज़ा किराम से रास्ते में रहा जाए और इस तरह की तहकीकात और गुफ्तगू होनी चाहिए कि हमारा बच्चा किस तरह की आदत में है, और शुरू से ही जैसे पता चले कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है बच्चे में, तो फिर उस वक्त जो है वो जड़ से इसका और इब्तदा में जब तक इसका हल नहीं करेंगे तो फिर एक आदत पुख्ता हो जाती है तो फिर बहुत मसाइल आते हैं। उसके लिए यकीनन बहुत ज्यादा एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग और हिकमत अमली की हाजत होती है, जो कि अमूमन पेरेंट्स जो है वो इससे अक्सर वाकिफ नहीं होते। और तबीयत या आदत, तबीयत बोले या आदत बोले, जो भी मैं उसमें एहतियात करूंगा, लेकिन वालिदैन जब फिर वो बदलने जाते हैं तो वो ऐसे ही हो जाता है कि जैसे ग्लास की रॉड हो, उसको ब्रेक कर देते हैं बजाय इसके कि उसको मोल्ड कर।
और दूसरा ये कि ये सिर्फ टीचर से डॉक्टर साहब बात करना मेरा ख्याल है शायद हासिल नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में ये उमूमन होता है कि बच्चा हॉस्टल में रहता है ज्यादातर, क्योंकि वहाँ रिहाइश उसकी होती है। अब हॉस्टल में किसके साथ रह रहा है, इसके क्लासमेट कौन है, इसके रूममेट कौन है, इसकी गैदरिंग क्या है, ये उठता बैठता किसके साथ है। नॉर्मली ये बातें अब बच्चों को तो बच्चियों को जवान बच्चियों को उठाकर ये मतलब के लंदन और अमेरिका ना जाने दुनिया में कहाँ कहाँ भेज देते हैं। तो बस इसमें क्या मैं अर्ज कर सकता हूँ कि जो तालीमी इदारों का जो माहौल है अल्लाह की पनाह, और जो कैरिकुलम का जो हाल है अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला बस अपनी पनाह में रखे और उम्मत को जो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये जो आया हुआ है, जो तालीम के नाम पर जो खराबियां आई हुई हैं, हर हर किताब या हर चीज पर मैं कलाम नहीं कर रहा, मगर मैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू पर बात कर रहा हूँ। मौजू चलाए तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि बहुत नजर रखने की जरूरत है। आपको याद होना चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 70% नशा तालीमी इदारों में सप्लाई किया जा रहा है, 70% नशा। आपका बच्चा, आपकी औलाद, आपकी नस्लें कहाँ उठ रही हैं, कहाँ बैठ रही हैं, किसके साथ मिल रही हैं, इसके बारे में अगर मालूम नहीं। और इससे बहुत ज्यादा नशा दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर, बाद ममालिक में नशा लीगल है। जी हाँ, ड्रग्स नशा लीगल है, इंटॉक्सिकेंट को लीगल किया गया है, और अगर लीगल नहीं है तो बहुत हल्का हाथ रखा जाता है। शराब आम है, जुआ आम है, बहुत सारी चीजें आम है। वहां तो कोई फर्क की बात करो ना मेल और फीमेल की, तो मीडिया चिकना चिल्लाना शुरू कर देता है। ये चीजें मुसलमान को अपनी तालीम तरबियत और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को बहुत बगौर देखना समझना है, और उसी के मुताबिक अपनी और अपनी नस्लों की, अपनी औलाद की तालीम और तरबियत की बुनियाद रखनी है, ये याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कोई भी एक अच्छी सोच समझ रखने वाला मुसलमान मुझसे इख्तलाफ नहीं करेगा कि मैंने जो बात की है बहुत बुनियादी बात की है, कि ये वालिदैन की भी तालीम और तरबियत की बुनियाद और औलाद की भी तालीम और तरबियत की बुनियाद वही होनी चाहिए जो कुरान और हदीस में बयान की गई है, जो हमारे इस्लाम और दीन की बुनियाद है। जी कॉल दें।
अब्दुल गनी बोल रहा हूँ, इमरान साहब से मुखातिब हो रहा हूँ। तो मुझे कहने का ये है कि ये हम लोग पता खाना इफ्तारी के बाद जो है ना फौरन सुस्ती बहुत ज्यादा हो जाती है, तो माशाल्लाह मर्जी के ना जब देखते हैं तो इमरान साहब हो या हबीब भाई हो वो फौरन माशाल्लाह एक्टिव होते हैं। तो इनसे ये सवाल है कि अब इफ्तारी में क्या किया जाए कि हम मतलब सुस्ती ना हो।
तबीयत पर होता है बाद वक्त, इफ्तारी के बाद सुस्ती हो जाती है, काम हो तो फिर सुस्ती नहीं होती, मतलब काम ही नहीं, अब खाना खा लिया अब नहीं है काम, तो बातों का सुस्ती हो जाती है। अब हमारे ये कैमरामैन भी होते हैं, पीछे हमारे ये 5-6 लोग हैं जो ये पूरा स्टाफ, तो ये कि एक्टिव को पता है कि सर्विस देनी है, काम करना है, एक मुहिम है, एक तो हो जाता है। और अगर ना हो काम तो आदमी वैसे सुस्त पड़ा रहता है कि चलो खा पी लिया जब सुस्ता गए, तो थोड़ा टारगेट होगा तो अल्लाह ने चाह तो सुस्ती नहीं होगी, वरना नेचुरली खाना वाना खाने के बाद थोड़ी बहुत सुस्ती आ जाती है, लेकिन आप हिम्मत करेंगे तो ये सुस्ती भी चली जाएगी इंशाल्लाह। जी कॉल दें।
मेरा नाम मोहम्मद उनमर अजारी है, मैं पंजाब के शहर मेलसी से बोल रहा हूँ। हुजूर, मेरा ताल्लुक पंजाब पुलिस से है, मैंने नीयत की है कि मेरा बेटा जो इस वक्त हिज कर रहा है उसे इंशाल्लाह दर्शन जाने कराने के बाद इंशाल्लाह मुफ्ती कोर्स कराने तक की मेरी नीयत है, दुआओं की दरखास्त है। और निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2006 और 2007 में आपकी खिदमत की सआदत हासिल की है पंजाब पुलिस की तरफ से।
अल्लाह आपको जजाय खैर अता फरमाए, बहुत खूबसूरत कॉल की आपने। हर घर की अल्लाह करे ये सदा ये आवाज हो कि मेरा बेटा हाफिज आलिम और मुफ्ती बनेगा। अल्लाह वो दिन लाए हर घर में बाप ये नियत करे, ये वो सरमाया, ये आपने प्रॉपरली अपना कैपिटल सही जगह पर खर्च किया, यानी जो दुनिया में भी काम आएगा ये सरमाया, आखिरत में भी इंशाल्लाह काम आएगा। ये अक्लमंदी वाली बात है, बड़ी अक्लमंदी वाली बात है। मेरा बेटा हाफिज बन जाए, मेरा बेटा आलिम बन जाए, मुफ्ती बन जाए, मुबल्लिग बन जाए, दुनिया का काम, दुनिया का कारोबार, दुनिया की आमदनी ये कहीं नहीं जाती, रियली बताओ कहीं नहीं जाती, बल्कि बास अहम तरीन और मेहनत करने वाले और सही तौर पर कोशिश करके प्रॉपरली इस फन के माहिर जो हाफिज उलमा मुफ्तियान कराम होते हैं, ये कई प्रोफेशनल से बहुत अच्छी इनकी आमदनी होती है। सिर्फ आमदनी नहीं होती, इनकी इज्जत इतनी होती है कि आदमी इनकी इज्जत को भी टोपी पकड़ के देखता है कि इस इज्जत का चांद इतना जबरदस्त चमक रहा होता है। और दुनिया और आखरत के दीगर इनाम अलग, कयामत के दीगर इनाम अलग, और वालिदैन के लिए जो इसमें माशाल्लाह इसाले सवाब और आगे की जो राहतें हैं वो अलग है। तो बहुत खूबसूरत फैसला है आपका, बहुत खूबसूरत फैसला है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको, और अल्लाह करे कि तमाम वालिदैन अपनी औलाद के लिए ये फैसला करके फिर इस ट्रैक पर भी चलें। खाली फैसला करना नहीं होता, फिर इस ट्रैक पर भी चलना होता। अब आपने फैसला किया कि मैं अपने बेटे को मदीने लेके जाऊंगा, तो आपने फ्लाइट भी तो फिर मदीने की लेनी है ना, आपने रास्ता भी तो मदीने का लेना है ना। आप अब मदीने शरीफ की नियत करके बच्चे को बोले मदीने लेके जा रहा हूँ और फ्लाइट आप अमरीका की ले लेंगे, तो डेफिनेटली ये तो फिर अजीब हो जाएगा। तो जब नियत की तो फिर उसको रास्ते पर चलाए, तो फोकस करें। कॉल्स भी लेते हैं, लेकिन आइए थोड़ा सा मैं टॉपिक को अपने आगे लेकर चलता हूँ। बड़ा अहम मौजू इमाम गजाली अलैहि रहमान ने बच्चों के लिए फरमाया है, इस पर गौर करें। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ले लिखते हैं, इससे अपने साथियों से कोई चीज लेने से मना करे। ये बच्चों मुझे लेने की और मांगने की आदत होती है ना, इसके ताल्लुक से गौर से सुने। अब ये वालिदैन की जिम्मेदारी है और बच्चे वो डायरेक्ट मैं भी आपको अर्ज कर रहा हूँ, ये इमाम गजाली ने फरमाया ना बेटा इस पर आदत बनाना, इस पर अपनी आदत बनाए। फरमाते इस अपने साथियों से कोई चीज लेने से मना करें, यानी कोई चीज साथियों से दोस्तों से मांगनी नहीं है, लेनी नहीं है। अगर वो अमीर ज्यादा है तो उसे बताए कि बड़ाई तो देने में, यानी अच्छी बात तो देने में है, ना के लेने में। तो जो लेता है ना वो अच्छाई नहीं होती, अच्छाई तो देना होता है, यानी ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर होता है ना, ये मांगने वाला हाथ अच्छा नहीं होता। अच्छा, और लेने में जिल्लत और रुसवाई है। और अगर वो गरीब है तो उसे समझाए कि लालच करना और मांग कर लेना जिल्लत और रुसवाई का बाइस है। कितनी प्यारी बात है कि अगर वो मांगता रहेगा, मोटरसाइकिल मांगते हैं, कार मांगते हैं, या थोड़ा मोबाइल दे देना, या थोड़ा ये दे देना, या थोड़ा ये दे देना, या थोड़ा अपना ये दे देना, थोड़े अपने कपड़े दे देना, उस कपड़े मांग कर पहन लेते हैं, तो जूते मांग कर पहन लेते हैं, चश्मे मांग कर पहन लेते हैं, तो मोटरसाइकिल मांग लेते हैं, कभी किसी से गाड़ी मांग लेते हैं, कभी किसी क्या मांग लेते हैं, कभी पैसे मांग लेते हैं। नहीं, खुददारी, अपने बच्चों में खुददारी पैदा करें, बच्चों खुददार बने। अगर आपको इतना नहीं है, आप गरीब हैं, तो याद रखिएगा कि मांगना रुसवाई है, जिल्लत है, बेइज्जती है। लोग कहते हैं यार ये मांगता रहता है, मांगता रहता। अल्लाह ने जिस हाल में रखा बेटा खुश रहो, और ये अपने बच्चों की तरबियत करें। और अगर आप अमीर हैं तब भी मांगे नहीं, क्योंकि देना देना है ना, देना देना अच्छी बात है, देने में थोड़ा आदमी को यूं इज्जत होती है, और मांगते रहेंगे ना तो रुसवाई हो जाएगी। मांगने की आदत नहीं होनी चाहिए। और इमाम गजाली ने लिखा है कि बड़ा मतलब के वो समझाया है, कुत्ते की आदत है कि वो लुकमे के इंतजार और लालच में दुम हिलाता रहता है। ये कुत्ते की आदत है, बैठा रहेगा, दुम हिलाता रहेगा, ये कब वो छूटे, कब वो छूटे, तो हड्डी खा लो, ये खा लो, वो खा लो, तो लालच और हिर्स में कुत्ता रहता है। ये इमाम गजाली ने मतलब कैसी एक चोट की है। तो ये बच्चों की तरबियत बहुत जरूरी है कि इनमें मांगने की आदत ना हो। तो जितने भी मुझे बच्चे सुन रहे हैं, बच्चों मांगने नहीं, बल्कि इतनी खुददारी होनी चाहिए आपने कि भाई भाई से भी सवाल ना करे। बाबा का मोटरसाइकिल मांग लेते हैं, कार मांग लेते हैं, ये मांग लेते हैं, वो मांग लेते हैं। नहीं भाई, खुद देखे और दे दे तो अलग बात होती है, वो भी नहीं मांगनी चाहिए। इसी तरह स्कूल में, मदरसों में नहीं मांगना चाहिए। आप खाने का, खाने के लिए चले गए, अब खाने में भी ये होता है ना, टिफिन बॉक्सेस के भी अलग अलग सारे हिसाब किताब होते हैं, कोई घर से क्या लाता है, कोई घर से क्या लाता है। एक ही जैसा हो तो चलो सारे बच्चे एक ही जैसा खा रहे हैं, तो सब्र करें, हिम्मत से काम लें और एक मांगे नहीं, बस अब बच्चों मांगना नहीं है, ठीक है, हमने देने वाला बनना है। और आप अगर नाबालिग है तो आप तो दे भी नहीं सकते, ये भी नाबालिग के मसाइल भी बच्चे को सिखाने पड़ेंगे वालिदैन को, वालिदैन नाबालिगी के मसले कैसे सीखेंगे, माँ बाप खुद ही बेचारे अपने नाबालिग बच्चों की चीजें खा गए होते हैं कितने तो, और गुनाहगार हो चुके होते हैं, ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल दें
निगरान शुरा की बात का मैं कहते थी कि तैलीम एजुकेशन का पर्पस ही है कि ट्रेनिंग है, यानी तरबियत ओरिजिनल पर्पस है एजुकेशन का, बुनियादी एक मकसद होता है, बेसिक मकसद पर्पस जो है वो एक तैलीम का यही है तरबियत, और अभी तरबियत और तालीम ये यानी दोनों अलहदा सब्जेक्ट हो गए हैं, ऐसे समझे कि जो बच्चा जाता है पढ़ने तालीम उसमें तरबियत का गैप रह जाता है, इसकी शिकायत बहुत सारे वालदेन भी करते हैं और लोग भी बगैर खुद जानते हैं कि नई चीज ये मिलती है। अच्छा अब ये जो चीज है इसको किससे कवर करे तालीम, तालीम अल्हम्दुलिल्लाह अपने माहौल में दावत इस्लामी के माहौल में तो यानी तरबियत एक मौजू लेकर उस पर कोर्सेज करवाया जाता है, जैसे तरबियत कोर्स है दीगर, तो हम एजुकेटेड पीपल को हम तो इन्वाइट करते हैं कि आए हमारे पास कोर्सेज करें, तो इसके बारे में आप क्या अच्छा फरमाएं, कैसे रिकवर करें वो एजुकेशन और इसको साथ मिला करके कंटिन्यू करें। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम
वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंटरनेशनल इशू है और पूरा बदल दिया गया है माहौल, और तालीम के नाम पर इस कदर कंपेनिंग चलाई गई है, क्योंकि तालीम से डिग्री से सर्टिफिकेट से फर्स्ट सेकंड थर्ड मार्कशीट से इन तमाम तो चीजों से जॉब को अर्निंग को ऐसा एफिलिएट कर दिया गया है कि अब एक ही धुन है कि बस मैं पढ़ लूं, रट्टा लगाकर पढ़ूं, नंबर आ जाएं, ए ग्रेड ले लूं, बी ग्रेड ले लूं, ये मार्क ले लूं, इतनी परसेंटेज ले लूं, सर्टिफिकेट मिल जाए, जॉब मिल जाए, कोई ये रास्ता निकल वो रास्ता। तरबियत तालीम का जो बुनियादी चीज थी कि उसकी तरबियत होती, वाकई इस पर फुकदान। अब ये इतना बड़ा टॉपिक और इतनी बड़ी ये इस पर प्रॉब्लम है कि आप और मैं क्या कर सकते हैं। दावत इस्लामी में तो माशाल्लाह खुद आप कुरान हमारे देखें, तरबियत पर मुनहसिर है, इमाम गजाली अलैहि रहमा की किताबें पढ़ने तरबियत पर मुनहसिर है। अब ये किताबें पढ़कर कोई पहुंचाए तो सही, खुद कुरान करीम जैसी अजीम किताब तो है ही नहीं ना, ये तो अल्लाह का कलाम है, इसमें किस कदर तरबियत की गई है, किस कदर इसमें समझाया गया, किस कदर इसमें मतलब के एक बयान मौजूद है, क्या बयान है जो उसमें नहीं है, लेकिन पहुंचाए कौन, बताए कौन, सिखाए कौन। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बहुत बड़ा इशू है, बस आप दुआई करें और जितना वालिदैन अपने तौर पर कर सकते हैं वो करें, दुआ करें कि अल्लाह करे कि इसी बेहतरी आ जाए, अल्लाह दावत इस्लामी को ऐसी तरक्की दे दे, हमारे दारुल मदीना गली गली खुल जाए, यानी हर इलाके में 12 दारुल मदीना खुले तब भी कम है, हमारे मदरसतुल मदीना खोलने, जामितुल मदीना खोलने, यानी जितना खुला हुआ है ना, यूं समझे कि 850 हमारे जामितुल मदीना जिसमें आलिम कोर्स करवाया जाता है, 4000 हमारे मदरसतुल मदीना है जिसमें हिफ्ज व नाजरा और कुरान की तालीम दी जाती है, हमारे ये तकरीबन समझे कि 80-90 के आसपास, 70-80-90 के आसपास दारुल मदीना है जिसमें स्कूलिंग, ये स्कूलिंग सिस्टम है दावत इस्लामी का, दारुल मदीना इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम है, पूरी चेन है स्कूलिंग सिस्टम की जो मुख्तलिफ ममालिक में है। तो ये है, ये जो कुछ इस तरह हमारी ऑनलाइन कोर्सेस हैं, ये जो कुछ जितना इस वक्त है, इसको चलाने के लिए हमें अरबों रुपये की जरूरत है। जी हाँ, तकरीबन समझिए कि एक राउंड फिगर की बात करो तो हमें 10 अरब रुपए साल के चाहिए, राउंड फिगर की बात कर रहा हूँ, 10 अरब रुपए साल के चाहिए, और इस तरह के लॉकडाउन को जब हालात आ जाए बताए, इस वक्त दावत इस्लामी वाले किस कदर आजमाइश में होंगे। अच्छा ये काम कितने जरूरी है, अभी जो बात हो रही है ये तालीम और तरबियत का जो पूरा निजाम दावत इस्लामी बनाकर दुनिया भर में बैठी है और इसको चलाने के लिए और पूरे मुबल्लिगीन को, ये सारे टीचर और असातिज़ा, ये सारे निज़ाम को चलाने के लिए, पूरी तहरीक के निज़ाम को चलाने के लिए, जो हमारे 2.5-3 लाख वॉलेंटियर रजाकार इस्लामी भाई हैं और इस्लामी बहनें हैं इससे ज्यादा, उसके अलावा तकरीबन 31,000+ हमारे इम्प्लॉइज हैं जो मुलाजिमत करते दावत इस्लामी में, इनको सैलरीज पेमेंट करनी पड़ती हैं। जब मदरसे जामितुल मदीना खुलते हैं तो 3 टाइम को उसमें खाना है, यूटिलिटीज हैं, مدنی مراکز ہیں، مساجد ہیں، عمارتیں ہیں، ان کے مینٹیننس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. تو ایک راؤنڈ فگر کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، ایک مثال کے طور 10 ارب روپیہ کا دعوت اسلامی نے کرنا ہے تو بتائیں کہ ابھی اس وقت 10 ارب روپیہ کرنا ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے، بہت آزمائش ہے. آپ مدد کریں دعوت اسلامی کی، اپنی زکات، اپنا فطرہ، اپنے صدقات دعوت اسلامی کو دے. یہ نظام چلنا بہت ضروری ہے. مدنی چینل فری چل رہا ہے نا، مدنی چینل میں کوئی ایڈ نہیں دیکھ رہے آپ. آپ کے سوشل میڈیا ہمارا دیکھ لیں، آئی ٹی ہمارا دیکھ لیں، سارا ڈیجیٹل نیٹ ورکنگ دیکھ لیں آپ ہماری. اچھا پھر ڈیجیٹل نیٹ ورکنگ میں ہم کام کر رہے ہیں، مزید اس پر ہم کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کو دعوت بھی دے رہے ہیں کہ آئیے آپ ہم سے ایفیلیٹ ہو جائیں، ہم سے وابستہ ہو جائیں، آپ ہم سے جڑ جائیں. میں آپ کو ایک پرومو دکھاتا ہوں، ذرا پرومو دیکھیے.
الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی ڈیجیٹل سروسز موبائل اپلیکیشن میں اب آپ اپنی بیسک انفارمیشن یعنی بنیادی معلومات محفوظ کیجئے. انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کی طرف سے وقتاً فوقتاً ضروری معلومات اور اہم پیغامات و اعلانات آپ تک پہنچتے رہیں گے.
یہ دعوت اسلامی ڈیجیٹل اپلیکیشن میں اب آپ اپنے رجسٹریشن بھی کروا سکتے ہیں. جلدی جلدی اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنی ساری معلومات، بنیادی معلومات فراہم کریں تاکہ وقتاً وقتاً آپ کو دعوت اسلامی کی اپڈیٹ سے مطلع کیا جائے. یہ تربیت اور تعلیم دونوں کے لیے نا، کہ آپ کو میسیجز آئیں گے، ویڈیوز آئیں گے، آپ کو بہت ساری چیزیں آئیں گی. تو یہ اربوں لوگ ہیں جو اس وقت موبائل یوزر ہیں، اسمارٹ موبائل یوزر ہیں، ان تک آپ یہ پیغام پہنچائیں کہ یار ہم کو یہ سب کچھ کرنا ہے. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ جو اربوں روپے کا خرچہ ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ کر ہمارے اسلامی بھائیوں سے تعاون کریں. ان کو آپ اپنی زکات، فطرہ اور چندہ دیں. اسلامی بھائیوں اگر آپ مجھے سن رہے ہو، اسلامی بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں، مہربانی کریں، آپ پوری طاقت لگائیں دعوت اسلامی کے لیے، ڈونیشن کرنے کی، چندہ کرنے کی، زکات فطرہ جمع کرنے کی. میں خود روزانہ کی بنیاد پر ڈونیشن کر رہا ہوں، الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر، کم و بیش آپ کہہ سکتے ہیں میں روزانہ کی بنیاد ڈونیشن کر رہا ہوں. ہمارے اراکین شورا، تقریباً ہمارے اراکین شورا، ایک بڑی تعداد اراکین شورا کی روزانہ کی بنیاد پر الحمدللہ ڈونیشنز کر رہی ہیں. ہمیں ظاہر ہمیں سیلریز بھی دینی ہے، تو ہمارے پاس جو یہ جو 31,000+ امپلائیز کو جو سیلریز دینی ہے، وہ تو ہم نے دے ہی دینی ہے نا. اللہ نے چاہ تو دیں گے، لیکن کہاں کہاں کیا کیا پرابلم آ رہی ہوگی وہ تو ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی جان لو. یہ 31,000 امپلائیز نہیں ہیں، یہ سمجھے 31,000 فیملیز ہیں. اس لاک ڈاؤن کے دور میں خدا نہ کرے ان کے سیلری رکتی تو کتنا بڑا پرابلم ہوگا. تو ان کو ان کے ٹائم پر سیلری پہنچے. تو یہ دعوت اسلامی کوشش کر رہی ہے، لیکن تحریک تو چندے سے چلے گی نا. تو آپ دعوت اسلامی کو جتنا مضبوط کریں گے، اس کے ادارے جتنے مضبوط ہوں گے، یہ اس کا اتنے ادارے کھلے ہیں اور اتنے کام ہو رہا ہے، اس وقت یہ حال ہے. اگر ہم اس کا ڈبل کرتے تو 20 ارب روپے چاہیے ہوگا، اس کا ٹرپل کرتے ہیں تو 30 ارب روپے چاہیے، کل 50 ارب روپے چاہیے ہوں گے، اور تب بھی آپ ملک اور بیرون ملک کے علاقوں کو کور نہیں کر سکیں گے. آج بھی میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں کئی مسلمان آبادیاں ہیں جہاں مساجد کا پرابلم ہے، اور ہم نے یہ تہیا کیا ہوا ہے، عزم کیا ہوا ہے الحمدللہ. شورا نے، دعوت اسلامی کی مرکز نے، شورا نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جہاں مسلمان آباد ہیں، مسلمانوں کی آبادی ہے، اگر وہاں مسجد نہیں ہے دعوت اسلامی، وہاں مسجد بنا کر، یا مسجد کا وہاں ایشو ہوگا تو انشاءاللہ جائے نماز بنا کر دے گی. وہاں کے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے مبلغ کا انتظام کر کے دعوت اسلامی دے گی. الحمدللہ ہم نے یہ عزم کیا ہوا ہے. لیکن تمام تر چیزوں کے لیے جہاں مین پاور کی ضرورت ہے، ڈیفینیٹلی فائنینس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ٹریولنگ ایکسپینسز، کنسٹرکشن، تو پرچیزنگ، ایوری تھنگ. لوگ دیتے ہیں ماشاء اللہ، مجھے ساؤتھ افریقہ کا تجربہ ہے، یو کے کا تجربہ ہے، امریکہ کا بھی تجربہ ہے، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا، دنیا کے کئی ملکوں کے اندر جو ہمارے مراکز ہیں، اسی طرح ہانگ کانگ کے اندر یا دیگر ہمارے ممالک میں، بینکاک کے اندر. میں ہانگ کانگ گیا تھا پچھلے دنوں، تھوڑے سے پہلے میں جا کر دیکھا 10 سے 11 ہمارے مدرسے اور مراکز بنے ہوئے. میں دیکھو ہانگ کانگ کور کر لیا دعوت اسلامی کے مبلغین نے. شاباش آپ کو ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ وہاں ہزاروں مسلمانوں کو اس قدر ان کو آپ نے سہولت مہیا کی ہے، نمازوں کے لیے، دیگر تعلیم و تربیت کے طور پر. وہاں کے لوگ بھی دے رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں، تو چل رہا ہے. लाखों डॉलर खर्चा है वहां का, सिर्फ हांगकांग का लाखों डॉलर का खर्चा है हमारा सर, महाना और सालाना तो ना जाने कहां तक जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप मेहरबानी करें दाऊद इस्लामी के साथ। ये क्यों मौजू चला, तो इसलिए मैं आपको दोबारा कर दूं कि ये तालीम और तरबियत जिसके लिए हम कुर रहे हैं, इसके लिए दावत इस्लामी अजम किए हुए है, कॉलेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ हमें जाना है, लेकिन इन तमाम तर कामों को करने के लिए हमारे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। आप बिलीव करें हमारे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, हमने रोक दिए हैं कि रोक दो, फाइनेंस का इशू है, पैसों का इशू है, अरबों रुपए चाहिए होते कामों को करने के लिए। अच्छा, चीजें स्टेब्लिश करने के लिए करोड़ों रुपए और अरबों रुपए चाहिए, फिर इनको रनिंग रनिंग एक्सपेंसेस तो अलग होते हैं ना। ये सब जो जो थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, आपको घर चलाना है इस वक्त आपके लिए प्रॉब्लम है। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम जो दावत इस्लामी इस वक्त फाइनेंशियली तौर पर भी फेस कर रही है, आपकी अपनी दावत इस्लामी इसके साथ भरपूर ताउन करें, माली ताउन करें, वक्त दें। अल्लाह ने आपको सलाहियतें दी हैं, आपको अल्लाह ने कोई काबिलियत दी है, हुनर दिया है, तो दावत इस्लामी के काम आपके सामने, आप अपने आप को पेश करें, वॉलेंटरी पेश करें, अपने आप को पेश करें कि मैं दावत इस्लामी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आपको अल्लाह ने ताल्लुकात दिए हैं तो आप अपना भी चंदा करो, दावत इस्लामी को चंदा डोनेशन करवा कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं हमारे इस्लामी भाई। तो ये सारी चीजें मैंने कहा चले आज मौका मिला है तो मैंने आपके सामने अपना एक दर्द बयान किया है। आप ही का दर्द है, आप ही की तहरीक है, आप ही की दावत इस्लामी है। जितनी तरक्की करेगी इंशाल्लाह इस्लाम दीन सुन्नियत की इसी कदर खिदमत होगी। और अभी तो यूं समझे कि कुछ परसेंटेज भी काम नहीं हुआ, अभी तो दुनिया बाकी है, खुद मुल्क बाकी है। हर मुल्क के अंदर जाएं तो उस मुल्क के अंदर आप जाकर देखेंगे तो बड़ी परसेंट अक्सर हिस्से तो खाली पड़े हुए हैं, जहां भी आपने जाना है, पहुंचना है और काम करना है और तरबियत भी करनी है, तालीम भी आम करनी है, मदरसतुल मदीना बालेगान भी खोलने, बड़ों के इस्लामी भाइयों के इस्लामी बहनों के भी ताउन जरूर कीजिएगा, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ कॉल्स ले लेते हैं।
गुलाम अब्बास अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। इस वक्त मैं निगरान शूरा का प्रोग्राम देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनकी उम्र इलम में बरकतें अता फरमाए। मैं भी एक गुजारिश करना चाहता हूँ और दुआ का तालिब हूँ कि मैं रिटायर्ड एयरफोर्स का हूँ, कराची में रहा हूँ। अब मियाँ बीवी आ रहे थे तो नन्हे मुन्ने दो बच्चे इस्लामी माहौल के वो अचानक रोड पे सामने आए। उस वक्त हमारे पास बच्चे नहीं थे तो मेरी बच्चों की अम्मी के मुंह से निकला कि या अल्लाह मुझे भी दो बेटे दे दे, मैं दावत इस्लामी को दे दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दो बेटे दिए, मैंने दोनों को दावत इस्लामी को दे दिया। एक इस वक्त चौथे साल में है और एक तीसरे साल में लाहौर में इलम हासिल कर रहे हैं। आप मेरे लिए उनके लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला मेरी इस कावश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
माशाल्लाह अल्लाह आपको आपके पूरे खानदान को आल औलाद को शादो आबाद रखे, दुनिया भी अच्छी करे, आखिरत भी अच्छी करे। बहुत वेल डन, शाबाश जी।
मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा थारी, मैं फैसलाबाद सरदाराबाद से बात कर रहा हूँ। निगरानी शुरा की बारगाह में अर्जी है, एक तो आपकी दाई तरफ अय्युहल वलद किताब है और बाई तरफ कौन सी किताब है उसका नाम बता दें। जज़ाकअल्लाह खैर।
इमाम आजम की वसीयत है, ये है, ये अच्छी तरबियत के लिए नसीहतों का मदनी गुलदस्ता, वसाया इमाम आजम, तर्जमा बनाम इमाम आजम की वसीयत है। ये मैंने रखी है कि ये वो दो किताबें, खास तौर पर यह रिसाला है अय्युहल वलद, ये बेटे को नसीहत, ये इमाम गजाली अलैहि रहमा की किताब है। तो ये रखिए कि इसको एक एडवर्टाइज हो रही है, यूं समझिए इसको लें पढ़ें जी।
मोहम्मद दानिश अतारी शारजा से, निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज है, माशाल्लाह हमारी नस्लें बहुत ही प्यारा टॉपिक आप लेकर आते हैं और मेरी आपसे अर्ज ये है कि ये तो वालदैन की तरबियत आप फरमा रहे हैं कि बच्चों के साथ हमने कैसा करना है, तो बाज़ औक़ात कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ पर वालदैन का साया उठ चुका है। तो बड़े भाई होते हैं और जो बड़े घर के होते हैं छोटे भाइयों पर बाज़ औक़ात को भाई ऐसा होता है कि जो बेचारा अच्छे अंदाज में अपने मामलात को नहीं कर पाता या उसके अंदर एक नॉर्मली इंसान के मुकाबले क्वालिटीज कम होती है, तो उसको हमेशा झाड़ते रहना, डांटते रहना, टॉर्चर करते रहना कि तू कर ही नहीं सकता और तू मतलब ये गलत कर रहा है, तुझे ये यूं करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए, तो इसके बारे में भी कुछ मदीफुल इशारत फरमाए ताकि घर के जो ऐसे बड़े हैं, बड़े भाई हैं, ताकि वो अपने छोटे भाइयों को लेकर इस तरह चले ताकि उन बेचारों को अपने वालदैन की कमी का एहसास ना हो, इसके बारे में कुछ मदीफुल इशारत फरमाइए।
बहुत बहुत शुक्रिया, तवज्जो आपने अच्छी दिलाई है। پچھلے چند پروگراموں سے میں یہ عموماً یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کہتا رہوں کہ والدین یا گھر کے بڑے یا سرپرست جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں، بڑے بھائی بہن اپنا کردار ادا کریں۔ یہ میں چند چیزیں عرض کرتا رہا ہوں، مگر یہ کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کال کی، تو جو بھی اس طرح دیکھنے سننے والے ہیں جن کے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہے نہیں ہے، تو وہ اب وہ ان کا کردار ادا کرے گا۔ بڑا بھائی والد کے بعد بڑا بھائی تو ویسے باپ کے سمان ہو جاتا ہے، تو یہ چیزیں بڑوں کو دیکھنی چاہیے۔ جی
میرا چھوٹا بیٹا اگر میرے دوستوں کے پاس آ کے پورا سلام کرے اور دونوں ہاتھوں سے سلام کرے، جو وہ کہتے ہیں میرے دوست کے نا یہ دیکھو یہ مولوی بن رہا ہے، تو اب اس طرح کیسے روکا جائے؟ بچے بھی پھر ڈیگریڈ ہوتے ہیں۔
نہیں، اگر یہ کہتے ہیں مولوی بن رہا ہے تو سینہ چوڑا ہو جانا چاہیے، ارے الحمدللہ میرا بیٹا میرے نبی کی سنت پر چل رہا ہے، میرے نبی کے دین پر چل رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چل رہا ہے، واہ 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 واہ، سیدھا چھوڑا آنا چاہیے، تو شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے؟ ان کے لیے دعا کر اللہ ان کو بھی مطلب کہ سنتوں پر چلنے کی اور دین پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ کسی ایئرپورٹ سے آ رہا تھا، ایئرپورٹ کا ماحول تو آپ کو پتا ہے، تو مجھے کسی نے کہا کہ یار بڑا عجیب نہیں لگتا ہم لوگ یوں امامے اور لباس اور کبھی چادر تو یوں ہوتے ہیں اور عجیب ماحول ہوتا ہے۔ میں کہا عجیب کیا لگے گا، ایک اندر اندر ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا، یا اللہ ایسے ماحول میں تو نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہم تیرے حبیب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے چل رہے ہیں، تو یہ تو شرمندہ ہونے کی بات ہے۔ یہ شرمندہ تو ان کو ہونا چاہیے کہ جو بیچارے نہ خود کر پا رہے ہیں نہ اولاد کو کروا پا رہے ہیں، آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر حاضری کی نیت ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔
میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے۔